ரமோரிஹந்தாழம் ரமோ சித்தாழம் ரமோ ஆயரியாழம் ரமோ வஜ்ஜாயாழம் ரமோ லோயே சவ்யசாஹூரம் மங்களம் பகவான் வீரு மங்களம் கௌதிமோகணி மங்களம் குந்தகுந்தாத்யோ ஜெயநிதர்மோஸ்து மங்களம் சர்வமங்கலமாங்கல்யம் சர்வகல்யாணகாரகம் பிரதானம் சர்வதர்மாணாம் ஜெயநம் ஜயது சாஸனம் ஜெயநம் ஜயது சாஸனம் நம ஸ்ரீ வர்த்மானாய நிர்தூதகலிலாத்மனே சாலோகானாம் த்ரிலோகானாம் யதி வித்யா தர்பணாயதே தீசயாமி சமீசீனம் தர்மம் கர்ம நிவர்ஹிணம் சம்சாரி துக்கத சத்வான் யோதரத்துத்தமே சுகி சத்ருஷ்டி ஞான வ்ரத்தானி தர்மம் தர்மேஸ்வராவிதோ யதீய ப்ரத்யனீகானி பவந்தி பவ பத்ததே. ரத்னகண்ட சாவகாச்சார் இஸ்கே ஆதார் சே பேஜ் நம்பர் 432 சப்தம் சல்லேகனாதிகார் யானி சமாதி மரண மகோத்சவ் இஸ்கி சர்ச்சா அப்பன்கு கர்ணா சமாதி மரண ஓர் மகோத்சவ் ரக்ஷா பந்தன் ரக்ஷா பந்தன் தோ ரக்ஷா அலக் சீஜ் ஓர் பந்தன் அலக் சீஜ் ஐசி சமாதி அலக் சீஜ் ஓர் மரண அலக் சீஜ் மரண தோ தேஹ கி வியோக் கா நாம் லோக் மே கஹா ஜாதா ஹை நா ஆத்மா ஓர் சரீர் கி சன்யோக் கோ ஜனம் ஓர் ஆத்மா ஓர் தேஹ கி வியோக் கா நாம் மரண. एक मरण होता है अपने आत्मा को जिस धूप युग का आनंद भोगना आना चाहिए उससे वंचित रहता उसे मरण कहते हैं। यो भाव कर्म या भाव मरण एक वो मरण है वो आत्मिक मरण है और ये संयोग वाला मरण है इसे सारे जगत को दिखाई देता है। एक सेकंड में कितने समय होती भाई साहब असंख्यात कितने समय होते असंख्यात और सिद्ध भगवान एक सेकंड में कितना असंख्यात बात एक सेकंड में कितने समय असंख्यात तो सिद्ध भगवान कितना आनंद भोग लेते हैं असंख्यात बात अनंत भगवान जो भी अनंत चतुष्टय के धनी है अब गणधर आदि देव इनको तो एक समय पकड़ में नहीं आता फिर भी ये तीन कसाई के अभाव वाला आनंद भुगते हैं। और अज्ञानता में क्या होता है कि एक सेकंड में असंख्यात बार भाव मरण का दुख भुगता वो दुख दिखाई नहीं देता क्यों नहीं दिखाई देता क्योंकि उस दुख में रहने का अभ्यास हो गया जैसे नरक के नारकी को नरक में रहने का अभ्यास वहीं पिटता रहता है वहीं जीवन हो गया कैद में पड़े कैदी को वहीं का जीवन बन जाता है कैदी कोई उन्हें छुट्टी भी दे तो भी नहीं निकलना चाहता ऐसे भी ऐसे इस मोही जीव को कितना भी श्री गुरु ने देह से भिन्न आत्मा बताया परंतु ये देह से भिन्न सोचने तैयार है हम सोचे या ना सोचे ये संयोग का वियोग होगा कि नहीं होगा ही होगा छूटने वाली वस्तु छूटे बिना नहीं रहेगी इसलिए पहले ही से मानस बनाओ कि ये सब छूटने लायक है। यदि पहले से ज्ञान होता है ना, जैसे फटाका फूटने लायक, बैलून फटने लायक, कांच की शीशी टूटती, पानी का बबूला डिस्टर्ब होता, ऐसे ही सोच लो पहले कि देह तो संयोग है, इसका नियम से वियोग हुआ। पहले ही से पढ़ो ना, देह अपनी नहीं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको, गरीब को कि अमीर को, डॉक्टर को कि मरीज को, इंजीनियर को कि किसको छोड़ दे प्रकृति है, सबके देह का वियोग एक दिन होगा होगा। इससे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो कोई दूसरे कारण से है, और वो तकलीफ दूर करने के लिए पाठ लिखा कि पहले ही से आप सोचो कि जो छूटता है वो छूटने लायक ही छूटता है, आपका नहीं था इसलिए आपसे अलग हो जाता है, और जो जिसका होता है वह वही होता है, वह उसके साथ होता है, वह उससे कभी छूटता नहीं, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव का सदा सद्भाव नहीं होता, नहीं टिक सकते। तो ये पाठ अपने आचार्य ज्ञानी जन अपन को पढ़ाते हैं कि मरण में ज्ञानी तो प्रसन्न होते हैं और मोह ही रोता है, तो ये आपका रोना कैसे मिटे, उन्हें क्यों नहीं रुदन होता, वो भी तो जीव हैं, देह छोड़ के और प्रसन्नता से चले जाते, और ये मोह में क्यों दुख होता। तो उन्होंने रिसर्च की कि ये जीव जो छूटता है उसे बहुत गहराई से अपनी मानता है, इस देह को, दस प्राण को, संयोग को, धन संपत्ति वैभव पुत्र राज परिवार सब संयोग को परमानेंसी से मानता है कि ये ही मेरा अस्तित्व है। अब इसका इलाज बहुत कठिन है, इसका इलाज ये कही है कि उसे तत्व ज्ञान होना चाहिए, बात जैसी है वैसी समझ में आना चाहिए। तो अपन को आज ये पाठ पढ़ना है, इसका नाम है संलेखना अधिकार। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चने प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहो संलेखना मार्या। फिर से पढ़ो, सबका मोह पवित्र होना चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चने प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहो संलेखना। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर और रोग हो जाने पर, कितनी बातें लिखी हैं, उपसर्गे उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्षे दुर्भिक्ष आने पर, जरसी यानी बुढ़ापा आने पर, रुजायाम यानी रोग आने पर, स्नेह प्रतिकारे यानी उनका प्रतिकार करना संभव न हो, रोगों को मिटाना संभव न हो, तब क्या करना चाहिए, धर्माय धर्म के लिए तनु विमोचन मा हो, तो शरीर को छोड़ देना चाहिए, काय के लिए छोड़ देना चाहिए, धर्म के लिए ऐसे छोड़ देना चाहिए कि नहीं, ऐसे छोड़ोगे तो आत्महत्या का पाप लगे, असंयमी जीवन में अजेनों में खोटी गतियों में जाना पड़ेगा, और यदि धर्म की रक्षा के लिए छोड़ते हो तो उत्तम गति को प्राप्त हो। ये कितनी अच्छी शर्त है, समंत भद्रदेव का श्लोक है, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना चाहिए, इसे संलेखना आर्य पुरुष कहते हैं। अब देव कितनी अच्छी बात इसमें लिख ली, कि देह में रहना, देह की रक्षा करना, यानी अपन अभी कहाँ रह रहे हैं, इस शरीर में। क्या सवेरे वाली चर्चा अनादि अनंत ज्ञायक चैतन्य परमात्मा की, और शाम वाली चर्चा ज्ञायक परमात्मा जिन संयोग में शरीर में रहता है और उसके कैसे निमित्त निमित्तिक संबंध बनते हैं उसकी चर्चा, स्यादवादी दर्शन है। तो अभी शरीर से संबंधित उसकी चर्चा है, और सवेरे शरीर से भिन्न आत्मा की चर्चा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि देह में रहना, यानी ये देह अपन को मिला, सोचा था अपन ने ये मिलेगा, परंतु जो मिला है वो अपनी ही कमाई है, यानी कोई जरूर विराधना की है जीव ने पूर्व में, बिना अपराध के शरीर का जेल खाना नहीं मिलता। तो ये जो मिला है ये किसी अपराध का दंड है, फल है, यानी कोई कैद में डाला जाता है तो कोई गलती हुई होगी। एक व्यक्ति लाइट नहीं थी और बाइक चला रहा था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो बिना लाइट के, तो बोले स्ट्रीट लाइट, तो ऐसा कुतर किया बड़े पुरुष से, तो उसने उसकी चक्के की हवा निकाल दी कि ये क्या करते हो साहब, कि हवा तो है, ये हवा तो है पर हम चलाएंगे कैसे, जैसे बिना लाइट के चला रहे हो ऐसे बिना हवा के चलाओगे, कहना ये कि अपनी लाइट चाहिए, स्ट्रीट की लाइट तो स्ट्रीट की लाइट के लाइट, पर आपकी खुद की लाइट चाहिए, ऐसे ये देह तो छोड़ेगी, ये तो नियम है, उसका तो स्वरूप है, परंतु आपकी अपनी तैयारी चाहिए छोड़ने की, कि ये छूटने लायक ही है, ये रखने लायक नहीं है, ये तो जेल है ना, तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, ये कारागृह है। और पत्नी को क्या कहा, बेड़ी, और परिवार को क्या कहा, कोई भाग ना पाए, पापा कहाँ जा रहे हो, एक मिनट निकलेगा और पीछे से लग जाएंगे, संसार का ही स्वरूप। अभी तो ये चर्चा चल रही कि बताओ शरीर छोड़ना चाहिए कि नहीं, अनु छोड़ना चाहिए कि नहीं है? अरे छूटा हुआ सवेरे है, अभी अभी की चर्चा, शाम की चर्चा, अभी शरीर छोड़ना चाहिए कि नहीं है? ऐसा उत्तर नहीं दिया कि छोड़ना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़ना पड़े तो छोड़ना, और शरीर की रक्षा करना पड़े तो रक्षा करना, उद्देश्य हमारा क्या है, धर्म की रक्षा। ये समझता है जैसे शरीर को छोड़ देना धर्म, वो कह रहे हैं शरीर मिला है तो इसमें रह के आपको अपनी आराधना करना, ये मनुष्य पर्याय चार गतियों में सर्वश्रेष्ठ पर्याय है, और इस गति में जो जीव पंचम गति की प्राप्ति का उपाय कर सकते, कोई मनुष्य शरीर से नहीं होती है आराधना, आराधना तो आत्मा से होती है, पर योग्यता इसी देह में रहने वाले आत्मा की होती, मनुष्य पर्याय में ही रहने वाला जीव ऐसी मंगल आराधना कर सकता है जिससे पंचम गति की प्राप्ति हो, पांच परावर्तनों का भाव, चार संस्कार टूट जाए, चार कसाएं छूट जाए, पांच पाप छूट जाए, जीव अपने घर पहुंच जाए। अभी तो जीव को ये जिनवाणी समझा रही है कि चेतन ये घर ना ही तेरो, चेतन अपनो रूप निहारो, कोई पति पत्नी दोनों जेल में पड़े हो और वहीं उनको संतान हो जाए, तो वो लड़का तो यही मानेगा कि यही हमारा घर, जेल को ही अपना घर मानेगा, परंतु कोई समझदार पड़ोसी कहेगा बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है तो जेल है। ऐसे कोई श्री गुरु मिलते हैं गुरुदेव जैसे, वो अपन से कहते हैं कि ये पर्याय शोभा नहीं देती है, शोभा तो सिद्ध दशा देती है, रत्नात्रय देता है, शुद्ध उपयोग देता है, शुद्ध परिणति देती है, आत्मा का अनुभव शोभा देता है, तुम कहां पड़ेगा। तो अभी जो पहली लाइन कितनी अच्छी आई इसमें, क्या आई, सदा सुखदास जी ने लिखी कि भैया शरीर छोड़ना काय के लिए बेबी, धर्म के लिए, और शरीर को संरक्षण करना काय के लिए, धर्म के लिए, भोजन पानी कराना हमारी आराधना में बाधा ना है, शुद्ध साफ भोजन कराना, इसे क्यों कराना, ये आवाज करता है और हमारी स्वाध्याय सामायिक खराब होती। तो अपन इसको भोजन पानी दे करके इसके योग्य बने ये कि हमें बाधा न डाले जितनी देर हम स्वाध्याय भवन में बैठे, जितनी देर हम सामायिक में बैठे, जितनी देर हम तीर्थ यात्रा करें। ये जो बाधा खड़ी करता है, ये बाधा ना आए इसके लिए भोजन पान दे करके शरीर का संरक्षण कराते हैं। और शरीर का जब संरक्षण नहीं संभलता, छूटने लायक काल आ जाता है, कैंसर हो गया, रोग घिर गया, 3 नंबर पर पहुंच गया, कूड़ हो गया, बहुत बढ़ गया, तब क्या करेंगे आप? किडनी दोनों फेल हो गई, तब क्या करेंगे? शरीर को छोड़ना कि धर्म को छोड़ना? ये पढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि शरीर के लिए तुमने अनंत भाव छोड़े। इस शरीर के लिए कितने भाव छोड़े? अनंतों भाव छोड़े। अब ये भाव धर्म के लिए शरीर को छोड़। एक चक्रवर्ती था, आपने सुना हो नाम, जिसने रसोईया के कान में गरम गरम खीर डाल दी थी। याद, शुभम था कि ब्रह्मदत्त था? शुभम था। गरम गरम खीर, इतना लंपटी था जिभ्या इंद्री का कि उसी समय पर खीर नहीं मिले तो तकलीफ होगी, और दी तो इतनी गरम गरम थाली से उठा के पीने लगा कि जीभ जल गई, और इतनी तेज गुस्सा आई कि वो गरम खीर उसके कान में भर दी, तड़पता हुआ मर गया। परंतु वो मरते समय इतना बोला, हे भगवान, हे भगवान का इतने में देव की पर्याय में पहुंच गया। सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया उसे, हे भगवान। जैसे मेंढक ने एक बार मन बनाया कि महावीर की पूजा करें, वो क्या जाने बेचारा महावीर क्या कहलाते, परंतु उसे पूर्व जन्म में आराधना करता था, डिस्टर्ब हो गई, भाव किया पूजा का, देव बन गए। अपन सब जिंदगी भर कमाएंगे तो एक देव के विमान बराबर भी कमाई नहीं कर पाए, ऐसे रत्नों के उनके विमान होते। तो वो रसोईया ने बदला लेने की सोची, व्यंतर बना, देव बना। अब उसने पूरे कटक को ले गया समुद्र में, और मीठा फल खिला के कि हम तुम्हें ऐसे अच्छे अच्छे फल, अमर फल खिलाएं, वो समुद्र के इस तरफ। और बैठा चक्रवर्ती, और जैसे ही बीच में पहुंचा समुद्र में, और उसने कहा कि आपने हमें पहचाना कि नहीं? कि नहीं पहचाना, कि हम वही रसोईया हैं जो तड़प के मरी थी, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। देखो, ये प्रतिमान युग से पता चलता है कि तुम किसकी जान कैसे लेते हो, तो तुम्हारी जान जाने का नंबर भी वैसे ही आता। बिल्कुल ऐसे एक एक समय की जैसे ये रील बनती है ना, इस तरह से कर्मों का आश्रय, बंद, उदय, ये सब चलता। ये तो केवल यानी ने सब बताया, अपन ने पढ़ा। तो उसने कहा कि हम वही रसोईया हैं, तुम्हारे प्राण लेंगे, उपाय क्या है? डरने लगा वो कि तुम नमो कार मंत्र का अभिनय करो। अब ज्ञानी जन ये कहते हैं, यदि वो देह को भिन्न जानता और ये प्राण मेरे नहीं है, मर जाएंगे परंतु धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो पुण्य नहीं जलता सुलभ उसका। सुनना जरा, वो पुण्य कब जला? जैसे ही उसका मन मना कह रहे हमें बच जाए, चाहे जैसे बचे, और नमोकार मंत्र के प्रति अभिनय का भाव भरा था, लिखना लिखना संभव कहां था, भाव या इतने में सारा पुण्य जल गया और साथ में नरक में पहुंच। क्या बताया इसमें कि तू यदि देह में ममत्व रख के धर्म को छोड़ेगा तो दुर्गति होगी, और आत्मा में आदर रख के देह को छोड़ेगा तो सुगति होगी। थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जीव को देह के प्रति बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा होता है। वो मंदिर में भगवान के सामने फोटो खिंचवा ले, अपनी इज्जत करवा ले, माला पहन ले, उनसे ऊंचा बैठ जाए, इज्जत बना ले, यही यही सब नाटक अपन देख सकते हैं मंदिर में। क्या कर सकते मंदिर में, जो भव के अभाव का प्लेटफार्म है, वही भव बढ़ाने का काम कर सकते। ये जीव को देह से लगाव गहरा है, मिथ्या है, तो वो उल्टा उल्टा पढ़ाते। तो पंडित साहब ने क्या गजब की 2 लाइनें लिखी फिर से, कि यह देह में रहता है और देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए, धर्म कौन सा है? वितरागी, शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन ज्ञान चार दस लक्षण ये पवित्र परिणति धर्म कहलाते। अब कहते इसके पीछे अपन यानी किसी ने हमें गाली दी और अपन ने वो क्षमा छोड़ दी और उससे लड़ने लगे, किसी ने अपन को माला पहनाई और मार दो धर्म छोड़ दिया और इज्जत बना ली, किसकी शरीर की कि आत्मा की? शरीर कौन लगता है अब अगले भाव में मिलेगा, पहले था ये और बीच में आया और बीच में छूट जाएगा, और कितने कष्ट से आया है। कभी गर्भ के कष्ट याद करें, आत्मानुशासन में लिखा कि हे भगवान ये जीव बुढ़ापे में क्यों कांप रहा, ऐसा लिखा आत्मानुशासन गुणभद्र से, ये बुढ़ापे में कांपता क्यों है, देह तो छूटेगी सबकी, बोली इसी डर लग रहा है कि अब पेट में हम 9 महीने कैसे रहेंगे, गर्भ के कष्ट से याद आने लगे कि ये कोई को माफ नहीं करती प्रकृति, चाहे राजा महाराजा देव हो कोई भी हो, बिना गर्भ में आए सैनी पंचेंद्री व्यक्ति का जन्म नहीं होता, ये तीर्थंकर को भी माफ नहीं है, तो हम और आप कौन से खेत की। गुरुदेव श्री ने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर में ही बोल लिखा कि ये जीव देख तो संसार का स्वरूप, ये तुझे अपने बारे में विचार आता है। तीर्थंकर का भी यही हाल हुआ, उन्हें भी पेट में 9 महीने रहना पड़ा। यदि अब तुम्हें इस परिपाटी बंद करना हो तो देह से ममत्व तोड़ना प्रारंभ करो, देह छता जेणी दशा बरते, वो भी तो जीव थे, देह में रहते थे पर अपने को देह से न्यारा देखते। ये देखो ये कुदरत तो किसी को माफ करने वाली है, स्वयं किए जो कर्म सुभाषुभ फल निश्चय ही भेदी, जैसा जीव ने बंद बांधा है उसका उदय आएगा। अब अपन को यही मम्मी क्यों मिली, यही पापा क्यों मिली, यही दुकान क्यों मिली, यही शरीर क्यों मिला, ऐसे साथी क्यों मिले, ये सब पूर्व नियोजित है, आपकी ही कमाई है। प्रत्येक व्यक्ति ने जो पूर्व में उपार्जन किया है उसके ही फल जगत में आते हैं, इसे कोई भी इस व्यक्ति को सुखी दुखी कर सकता ही नहीं। सुख दुख में निमित्त तो हो सकते पर सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो पहली शर्त क्या लिखी हुई है कि यदि तुझे धर्म के पीछे तो अनंत बार तूने शरीर के पीछे तो अनंत बार दे धर्म छोड़ा और देह के पीछे, अब एक बार तू कमर कस ले के अब देह लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे तू भी कभी न्याय से मेरा, मन बनाना पड़ेगा, बहुत कष्ट है संसार के। अपन कितने भी जो अभी थोड़ा काल ऐसा पुण्य का बीतरा है अपना, अभी छत्र छाए बैठे ठंडक है, अभी कोई सता नहीं रहा, अब अपने संतों को याद करो आप, यानी जिनकी जब उदय आए तो अपने मुनिराजों को घानी में पील दी, 700 मुनिराजों की चारों तरफ आग लगा दी, पांचों पांडव बताओ कैसे जले है? 5 पांडव जो भगवान बनने जा रहे 3 और कहां गए वो देव, ऐसा अपनी कल्पना में बैठा लोग, देव कहां चले गए थे, क्यों भैया देव तब खड़े होते हैं जब खुद का पुण्य का उदय, और जब पुण्य का उदय नहीं है तो देव कैसे खड़े हो जाएं। आपने भी किसी को इसी तरह आग में देह आग लगाई, गज कुमार ने गर्म रोटी रख दी थी एक के व्यक्ति के पेट पर और वो सिगड़ी बन के आई उदय में, FD में पैसा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि आग लगा दी उसने माथे। विकट संसार है, मन बनाना पड़ेगा कि हमें इससे निपटना है, कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, हम किसी को कुछ दे सकते हो ले सकते हो ऐसा स्वरूप नहीं है, हम अपना परिणाम बिगाड़ते हैं और अपने भाव खड़े करते, और हम ही अपना सुधार कर सकते हो, कब कर सकते जब ये प्राप्त पर्याय को न्यारा जाने, क्योंकि सारे पाप तो इस 5 इंद्रिय के लिए होते, इनमें मजा आता है जीव को सुख दिखता है तो इसके पीछे झूठ भी बोले चोरी भी करे हिंसा भी करे। आपको मालूम है सुन लो रावण की बहन का नाम क्या था, सूप नखा चंद्र नखा था, और उसका बेटा 12 वर्ष की तपस्या कर रहा विद्या सिद्ध की, चंद्रहास खड़क, ठीक है, और वो खड़क सिद्ध भी हो गए। अब उसको एक विकल्प यह आया कि हाथ में आ जा, इतना और विकल्प सता रहा था, एक हफ्ते में वो भी आ रहा था, ऐसा उसे पता चल गया। अब वो वही बीड़े में बैठे रहे और उसकी मम्मी वही भोजन ला के दे, और लक्ष्मण वहीं से घूमते घामते आए कि क्या चमक रहा है हत्या, तो पकड़ लिया और उसने उस बांस के बीड़े को ऐसा चला के देखा कि देखें इसका धार वाला हिस्सा कितना तेज है, तो उसमें बैठा हुआ वो शंभू कुमार का गर्दन कट गया, मर गया। अब देखना जरा, बता रहे जगत की कथा कि शंभू कुमार की माँ जो रोज भोजन लाती थी और बच्चे की देखरेख करती थी, जैसे ही आके देखा कि मेरा बरदा तो मरा पड़ा है, अरे ये किसने मार डाला, ऐसा क्यों बेटा, क्या हुआ तुझे, अभी तो 2-3 दिन का समय और था, किसने इसको बीच ही में खत्म कर दिया, 12 साल इसने तपस्या की, ऐसा रो रही थी और अपने बच्चे की गर्दन हाथ में लिए घूम रही थी, और इतने में राम और लक्ष्मण दिख गए। अब क्या हुआ, एकदम कामासक्त हो गई, वो लड़का तो एक तरफ डाल दिया और बोली लक्ष्मण से, तुम हमारे साथ संबंध कर लो, हमारा पति है नहीं, हम जंगल में रहते हैं, हमने शादी कराई नहीं, और जब से अनाथ हैं आप मुझे स्वीकार करो, कि मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरे उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं। और राम से पास पहुंची तो उन्हीं से बोलने लगी, मुझे स्वीकार कर, बहन मेरी पत्नी है, मुझे किसी से संबंध नहीं करना, तो मेरी बहन के बाद हम ये पूछ रहे हुए कि बेटा मरा डला है, और ये परिणाम कहां से आ गया, बेटा मरा डला है जिसको जन्म देने में 9-9 महीने रखा हो, वो कष्ट सहे हो, और इसके बाद ऐसे परिणाम हो गए, कैसे मरते देर नहीं हुई, और पति उसका है जिंदा विद्याधर, और इसके बाद वो किसी पर पुरुष को चाहने लगे। ये परिणामों की विचित्रता देख के लगता है ना कि ये जीव कैसे भी होश रहा अनंत काल ऐसे भी। तो अपने आचार्य भगवान संभालते हैं कि भैया ये देह के पीछे तुमने अनंत भाव खराब किए हैं, इस भाव में अब देह को भिन्न जानना, धर्म के लिए देह छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, परंतु आत्मा का कल्याण नहीं छोड़ना। ऐसा कोई पूर्व जन्म का बैरी असुर पिशाच आदि देव आकर उपसर करते हैं, दुष्ट बैरी भील मिलीच आदि सिंह व्याघ्र गज सर्पादि दुष्ट त्रियंशकृत उपसर्ग आ जाता है, प्राणों का नाश करने वाली पवन चलती है, वर्षा चलती है, भूकंप होता है, ये सब अपन पेपर में रोज पढ़ते, गाड़ी से बाइक टकरा गई वो मर गए, भूकंप आया वो मर गए, कार नदी में गिर गई बहुत से लोग मर गए, बम फट गया वो चले गए, ये लिखा है और ये अपन सब देख। यदि अपन होते सुलभ उसमें तो क्या होता, जब ट्रेन टकराती है और पटरी से नीचे उतरती है और सैकड़ों लोगों की अपन को खबर मिलती है कि ये चले गए ये चले गए, यदि उसमें अपने पापा बैठे होते, मम्मी बैठी होती, भाई बैठा होता, अपन बैठे होते तो कैसा लगता। अभी तो विचार करने के लिए कह रहे कैसा लगता है, ये कहते हैं कि ऐसी अनंत बार अपने मरण हुए, स्वर्ग में तो नहीं है कोई एक्सीडेंट, वहां तो ठीक है क्या। तो बाबू जी क्या लिख गए, कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अंतिम टेव, अंत में बिलखे छे मास, कहें हम कैसी उसको देव। अब यह स्वर्ग में क्या दुख है, वहां तो सारी अनुकूलता अवधियान है, अनुकूलता है, बहुत लंबी आयु है, पर अज्ञान कहां से अलग कर दो, राग को कौन दूर कर देगा, सारी कसाएं तो दुख देती, तो बिना भूकंप के भूकंप आते स्वर्ग में, बिना एक्सीडेंट के एक्सीडेंट हो रहे, वो रात दिन घुटता है, राग उदय सो जीव स्वर्ग में, स्वर्ग में देवगति में भी राग के उदय से वहां भी जीव तड़पता है। आप विचार करना कभी, निगोदिया का जीव और नौग्रेवक का जीव दोनों एक से दुखी हैं मिथ्यात्म, एक इतनी अनुकूलता में विराजमान और एक इतने प्रतिकूलता में विराजमान। क्षुद्र ज्ञान है अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान, और एक को कितना ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, कितनी विशुद्धि है, कितनी अनुकूलता है, और दुख एक सा है। ऐसा बता सकते क्यों? नौग्रीवक का देव जो झूले पे झूल रहा है रत्नों के, और निगोदिया जीव जो प्रति अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मर रहा, एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा निगोदिया का जी। अब जिनवाणी ये कहते हैं यदि तुम्हारा ज्ञान सही हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि नौग्रीवक का देव और निगोदिया जीव एक से दुखी। अब एक से दुखी कैसे हो भाई, एक से दुखी कैसे हो? दुख इनको अधिक है निगोदिया को, नारकी को बहुत दुख लगता है, और वो कह रहे हैं कि नहीं एक सा दुख है। किस बात से एक सा हो? क्योंकि दोनों ने आत्मा की एक सी अरुचि बना रखी, दोनों ने पीठ एक सी दे रखी है, दोनों के पास श्रद्धा में आत्मा नहीं बैठा है, तो वो दुख तो आत्मा के विस्मरण का होता है ना, तो दोनों को एक सा दुख होगा कि छोटा बड़ा होगा? क्योंकि उन्होंने जो आनंदमयी आत्मा है दोनों ने छोड़ रखा। सोचना भाई कितना कष्ट है। अभी तो कह रहे कि देखो ये पूर्व जन्म की बैरी आके सता सकते हैं, न जाने कैसे कैसे उदय जीव के हो सकते हैं। अरे ये देखो नीचे लिखा कि निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए, प्रसंग पड़ सकता है, अकेला भटक जाए जीव। अरे प्लेन क्रैश हो जाए और वो गिरे जंगलों में, तो वहां बताओ इसके साथ कौन? और वो प्यासा हफ्तों का तड़पता हो, अभी चेकती चेतना में आया था, और उसे कोई व्यक्ति कहे प्यासे व्यक्ति के द्वारा प्यास की तकलीफ है ना उस, और कोई कहे कि मैं तुम्हें एक लोटा पानी देता हूं, तुम अपना चक्रवर्तित्व का पूरा राज दे दो, तो बताओ राज देने तैयार होगा कि नहीं? सारा राज दे देगा, कितने लोटा पानी में? एक लोटा, बताओ उसके राज की कितनी कीमत? क्या दम है इस संसार में? अपन को कोई भ्रम हो गया है, यहां भी सुख संसार में भी सुख, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये कुदरत किसी को माफ नहीं करते, बहुत ईमानदारी से विश्व चल रहा, जिसने जिस जाति का जो अपराध किया है उसको उस जाति का योग बनता है। योग से कष्ट नहीं होता, उसके ममत्व भाव से दुख हुए बिना नहीं रहता। यदि उसे दुखी नहीं होना है तो मोह छोड़े, यदि उसे सुखी होना है तो आत्मा जाने, इसके अलावा कोई रास्ता भगवान ने नहीं दे। भगवान सुखी कर सकते कि नहीं अपन को है? और संसार अपन को दुखी कर सकता है कि नहीं? कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते। ये जिनेंद्र देव की बातें अपन को गर्व से मिली हैं। ऐसा जगत में सारे जीवों के प्रति द्वेष खत्म कर दे ऐसा जैन शासन, क्योंकि हमारा किसी ने अहित किया नहीं, ये कितनी बड़ी शुभ समाचार। अपन को तो ऐसा लगता था हमारी बेटी की शादी होना है ना, और एक व्यक्ति ने बिल्कुल पसंद कर लिया और सामने वाले ने उसे डिस्टर्ब कर दिया, अरे क्या नहीं करना, तो बताओ उसके प्रति भाई साहब द्वेष आएगा कि नहीं? उससे आएगी कि नहीं, जिसने बना बनाए काम बिगाड़। और जब अपन अवधियानी मुनिराज से पूछने गए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मैना सुंदरी की शादी तो श्रीपाल से होना है, तुम कहां चाह रहे थे? सारा बोझ उतर गया। अपन क्या समझ रहे थे इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले, सीए डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े संबंध आए, ऐसा हमसे अजमेर में एक बैंक के ऑफिसर की पत्नी ने कहा कि पंडित साहब इतने इतने अच्छे संबंध आए, कोई सीए लड़का था, कोई इंजीनियर था, कोई कैसे सुंदर सुंदर, और ये लड़की ने सब संबंध ऐसे फेल कर दिए, हम तो परेशान हैं। तो हमने कहा कि जितने संबंध आए वहां होने नहीं था, ये भगवान ने कहा, यदि होना होता तो फिर वहां हाँ पाड़ता नहीं। अपन क्या समझते कैंसिल हम कर रहे? वो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ के साथ त्रिशला का संबंध ये कूड़ा कूड़ी सागर पहले फिक्स है और अपन सोचते हैं कि ये कोई करा देता है और कोई अलग कर देता है। सारी सोच और अपनी विपरीतता का भार अपना जैन दर्शन उतार देता। इसका कोई न करता धरता अमिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे या में कर्मे उपाधि है। यदि निमित्त बनेगा तो कौन बनेगा? कर्म का उदय। परंतु जो हुआ है वो कैसा है? होने योग्य ही होता है, अनहोनी कबू न होसी काहे होत अधीरा। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अपने भगवान ने जो देखा है वह होगा, जो वस्तु में व्यवस्थित पड़ा है पर्यायगत योग्यता में वो होगा। अपन को तो निश्चिंत रहना चाहिए, आनंद भोगना चाहिए। 6 महीने 7 महीने तक आदिनाथ को आहार नहीं मिले, नहीं मिले, और वो प्रसन्न रहते थे कि दुखी। चंदन वाला को कितनी प्रतिकूलता, अपने तो कल्पना में नहीं आती कि एक सती महावीर भगवान की मौसी, उनकी मम्मी की बहन, और वो बेस्या बाजार में बिकने आई हो, अपन तो सोच भी नहीं सकते। और वो इतना प्रसंग बनने पर भी इतनी सी आकुलता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं है। अज्ञानता से जो मोह होता है वो दुख देता। मोह था नहीं, ममत्व था नहीं, जानती थी देखो क्या हुआ। श्रीपाल को उसमें सूली पे चढ़ाने ले जा रहे थे और 1 करोड़ व्यक्ति का बल था उसमें। ऐसा करता तो 1 करोड़ आदमी गिर जाते, इतनी ताकत। और 4 से 10 आदमी पकड़ के ले जा रहे थे सूली पर चढ़ा। धवल सेठ के कहने वहीं पर उनकी रेन में जिसा के साथ वो जो कौन सी स्त्री थी वो आई, क्या आप अपना सही पता क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं कहते कि हम छत्री खानदान के हैं, कोटी भट्ट हैं? आई बताओ ना इनके ऊपर से। क्या मैं नहीं बताऊं? क्यों 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 नहीं बताऊं? कि मैं देखूंगा ये कर्म का उदय कैसा कैसा आता, मुझे नाटक देखना है। थोड़ी देर बाद वो धवल सेठ खुद आया तो धवल सेठ की हकीकत समझ में आई कि इस पापी ने इसे समुद्र में गिराया, इस पापी ने इसकी पत्नी के प्रति खोटे वर्णाम किए और पकड़ा गया। तो वो आया और पैर पकड़ लिए श्रीपाल, बेटा मुझे बचाओ, ये नहीं तो मुझे फांसी पे चढ़ा। तो राजा को पता चला ये तो बहुत बड़ा राजा है, तो उन्होंने कहा श्रीपाल तुम बताओ इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। धवल सेठ, इसने तुम्हें समुद्र में पटका, इसने तुम्हें ऐसे ऐसे कष्ट और आरोप लगाए, क्या सजा दी जाए इसको? तो क्या उत्तर दिया वहां धर्मात्माओं के उत्तर, ये हमारा धर्म पिता है, इसके कारण से हमें समुद्र में नहीं गिरे, वो हमारा ही कोई पाप का उदय आया था इसलिए समुद्र। पूर्व जन्म ने हमें मुनि को समुद्र में पटका था और फिर उसमें से निकाला था, उनको कोड़ी कहा था और कोड़ी नहीं है ये, फिर बाद में क्षमा मांगी थी। तो वो एक एक घटना पूरी घट रही है कि ये हमें कोड़ हुआ और हमें समुद्र में डाला गया, समुद्र से हम निकले, हमारा कोड़ दूर हो गया, हमने मुनिराज को दोष लगाया था तो हमें लगाया, एक एक रील बनती जा रही। तो अब ये कह रहे उदय आ सकता भाई साहब, अब क्या करना चाहिए? ये नाटक देखना क्या होता, देखो आप ज्ञाता बन के देखो, थोड़ी पड़ोसी बना करके एक हकीकत देखो कि विश्व में क्या क्या होता है। नहीं देखोगे तो घटना घटे और देखोगे तो निर्जरा हो जाएगी, साक्षी बने रहोगे, अभ्यास हो जाएगा, मुक्ति के मार्ग में लग जाओ। तो अभी कहा कि निर्जन वन में भी दिशा भूल सकते हो, मार्ग नहीं मिल सकते, अन्न पान मिलना बंद हो, अभ्यास अभी से करो, यदि कभी भोजन न मिले तो शांति से उस समय आपका कैसा टाइम बीतेगा, नहीं तो आर्थ परिणाम होंगे, गति बिगड़ जाएगी। तो समस्त देह को जीर्ण कर देने वाले नीत कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली, जंगा बल नष्ट करने वाली, हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली वृद्धावस्था आ जाएगी, बताओ उस समय तुम्हारी क्या तैयारी? पहले से तैयार हो कि बुढ़ापा ऐसे ही होता है, अध मरे के बराबर हो जाता है, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो कैसे रूप। हमें तो अपने स्वरूप को देखना है, ये बुढ़ापे का दुख नहीं है, ममत्व का दुख। जब मैं बूढ़ा नहीं हूं तो मुझे क्या दुख। और तीसरे लिखा असाध्य रोग आ जाए सबको आ रहा। इस काल में तो ये असाता का उदय लेके बहुत आ। पंचम काल का दूसरा नाम दुखमा काल और छठवे काल का नाम है दुखमा दुखमा। तो इस दुखमा काल में दुख होना चाहिए कि नहीं बाबू जी? इसे कैसे रोकोगे? जब अपन विराधना करके आए हैं तभी तो इस काल में आए, तो ये रोग आएंगे कि नहीं? किसी को कैंसर होगा तो किसी को कोढ़ होगा तो किसी की किडनी फेल होगी, किसी को माइग्रेन होगा, हर आदमी की शुगर और बीपी की तो पूछनी नहीं चाहिए, ये तो घर घर की आमंत्रित सभी लोग देखो सब कुर्सियों पे बैठते। मतलब इसका अर्थ ही कमर सबकी बैंड हो गई, घुटने सबके बैंड हो गए, तो इसी पता चलता है ये सब अस्वस्थ है। वो कह रहे होंगे ये रोग, आप क्या सोचोगे? आपकी कल्पना एक तरफ रखो, इस काल में यही सब होना है। तुम अपनी तैयारी करो कि मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर बीमार। कुर्सी पे कौन बैठा है? आत्मा के शरीर शरीर बैठा है। अपने को आत्मा मानोगे तब वो दीनता नहीं आई, अकड़ नहीं आई। तो ऐसा रोग आ जाएंगे तब क्या करोगे? ये अवश्य मरण के कारण आकर यहाँ जहाँ प्राप्त हो जाए वहाँ चार आराधनाओं की शरण ग्रहण करके समस्त देह ग्रह कुटुम्ब आदि से ममत्व छोड़कर अनुक्रम से आहार आदि का त्याग कर देह का विसर्जन यानी त्याग कर देना चाहिए। कब? चार बातें बताई थी। कब? उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी, रुजायाम, चने प्रतिकारे। फिर से उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्षे, ऐसी विषम परिस्थितियां रोग आदि आ जाए, अकाल पड़ जाए, स्थितियां खराब हो जाए, यानी परिस्थिति खराब होने पर, जरसी यानी कौन व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरा बुढ़ापा नहीं है, ऐसा कोई कह के देखे कि मैं ऐसा आदमी हूं जो मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा और मैं मरण को प्राप्त नहीं होगा। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो भरत चक्रवर्ती आदि जो चक्रवर्ती होते हैं और तीर्थंकर के जी होते हैं, इन लोगों को बुढ़ापा नहीं आता। ये 16 साल के राजकुमार जैसे बने रहते, क्योंकि ये बहुत तीव्र पुण्य का बंधक बांध के आए। ये पूर्व में मुनि थे, बहुत उत्कृष्ट मुनि थे, तो उनकी आराधना का फल है। परंतु सब ऐसे नहीं हो सकते कि सबको, यानी भरत चक्रवर्ती की जो श्रीमतियां थी इनके बाल सफेद हो जाते थे, बूढ़ी लगने लगती थी, और ये नया लड़का 20 साल का लगता था, तो उन्हें शर्म आने लगती थी, तो वो कोठों में अलग निवास करने लगती थी अर्जिका जैसे, और ये अपने राजकुमार जैसे रहते। इनके 96,000 रानियों का योग बना ही रहता था, कितनी घट गई फिर उतनी आ जाए। ऐसा पुण्य लेके आए हैं और सुख बुद्धि है नहीं। रविंद्र जी का नाम सुना? वो कहते हैं कि लोग कहते भरत चक्रवर्ती भोगी है और ऐसा है। बोले ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते जो भी, ये बोले 32,000 मिलीच्छकंड की कन्याएं लाए, 32,000 विद्याधरों की कन्याएं लाए, और 32,000 आर्यखंड की कन्याएं लाए, 96 लाए, और इनके नियोग है। तो विदेश वो क्या कहते जो मिलेच्छखंड से लाए वहां तो धर्म होता नहीं, नहीं होता ना, परंतु इनके भाग्य में जो 32,000 आना है वे धर्मात्माओं जैसे जीवन जीते हैं। वो अभक्ष नहीं खाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा, और नारद जाएगा तो उन्हें जैन बना के आएगा, और वो कहते भरत चक्रवर्ती उन्हें लाता है तो जैन ही बनाने के लिए लाता है। अपन लोग सोच रहे हैं कि शादी रचाने के लिए लाता है, वो कहे वहां की लड़कियों को लाकर जैन ही बनाओ, ये भी भगवान बने। और आज भरत चक्रवर्ती की जो 96,000 रानी और इतना बड़ा कुल था, एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो घूम रहा हो, सभी आज सिद्धशिला में विराज। आखिरी जीव था जिसका नाम मारीच का महावीर था, वो भी अभी 24 में तीर्थंकर होके भगवान बन गए। एक बार तो कमर कसना पड़ेगी कि ये शरीर मेरा नहीं है, और ये जो जीतोगे आप समाधि मरण करोगे तो भेद विज्ञानी से कर पाओगे कि जहाँ देह अपनी नहीं। पहले ही से मान के सोचो ना कि जब ये छूटने वाली है तो कभी भी छूट सकती। तो वैसा जैसे अपनी हड्डी टूट गई है ना, और फिर अपन एक्सरे लेने जाए तो वह एक्सरे किसका है? अपने कहा जाएगा कि तो हड्डी का है कि अपना? और क्या आएगा किसका? अपना कहेगा कहलाएगा। ऐसे ये देह किसकी कहलाएगी? अपनी। और है किसकी? नाम कर्म के उदय से। पहले से सोचो ना कि ये दूसरे का विभाग, इसे पड़ोसी समझो। तत्व के कौतूहली बनो, अंतर मुहूर्त के लिए से न्यारा देखो। अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन स्वयं अपि निर्वृत्त पश्य सन क्षण मास में कम। भाई 6 महीना तो इसे पड़ोसी बना करके देख, तुझे आनंद आएगा। अभ्यास के लिए कहो। तो उन्होंने ऐसी 4 स्थिति रखी कि ये सब स्थितियां तो बनेगी। अब अपन को थोड़ा सा और पढ़ लेती है, एक पेज नंबर 433। देह तो अनंत भाव धारण करके छोड़ी है, किंतु ये रत्नात्रय धर्म अनंत भाव में प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए बहुत दुर्लभ। यानी अपन को जो जैन कुल मिला, आज सीमंदर भगवान की छत्र छाया में अपन बैठे, शांतिनाथ जी के पास बैठे, कुंदकुंद देव की शरण में बैठे, स्वामी जी के बहन श्री माता जी के पास बैठे, ये सब तीव्र पुण्य का उदय आया है। न जाने कौन सी आपकी मति खराब नहीं है, इसलिए आप इनके पास आए। अब ये यदि तुमने आत्महत्या की या आपने इन उपसर्गों को नहीं जीता तो ये सब धर्म छूट जाएगा। ये कह रहे, समझ में आए भी? ये कितना, कोई भी विषम परिस्थिति बने ऐसे कभी नहीं घबराना चाहिए कि हम मर जाएंगे। अब अरे काय को मर जाएंगे, शरीर मर जाए तो मर जाए, मैं क्यों अपनी जान दूंगा। ऐसी हिम्मत से जीना और पलायनवादी नहीं बनना, सामना करना, तो ये समाधि मरण धन्य हो जाएगा। नहीं तो ये देह छूटेगी, और जिस वासना को लेके छूटेगी, यानी एक मुनिराज जिनकी 48 दिन की समाधि चल रही थी, और उन्हें इतना आखिरी में जिनकी 48 मुनि देख रेख करने वाले, और आखिरी में एक तरबूज चढ़ा देखा मंदिर में, उन्हें ये भाव आ गया कि ये वो आहार में नहीं मिला। उसी समय आयु बंधना थी, और वो उसी तरबूज में आके कीड़े बन गए। तब जब समाधि हो गई और देहांत हो गया उनका, दूसरे अवध ज्ञानी मुनिराज आए, और फिर नगर के लोगों ने पूछा कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी समाधि हुई थी, 48 मुनि उसको संभाल रहे थे, हमारे ऐसे मुनिराज कहाँ गए? कि कुछ मत पूछो संसार की दशा कि कहाँ है, कि ये जो तरबूज रखा है इसको खोलो तो अभी दिख जाएगा, इसके नीचे अभी बैठा। कैसे बन गए? कि एक विकल्प ने पटक दिया। कितनी तैयारी चाहिए अपन को, स्वाध्याय की, तत्वाभ्यास की, देश भेद विज्ञान की, समता बनाए रखने की। हमें किसी को दोष नहीं लगाना, दोष किसी को नहीं देंगे, हम समता रखेंगे, क्योंकि हमारा उदय था जिसके कारण से तुम्हें ये दिख रहे थे शत्रु, और वो था अपना पाप का, खुद का उदय। धर्म के लिए आज तक अपन ने शरीर नहीं छोड़ा, धर्म अनंत भाव में प्राप्त नहीं हुआ, दुर्लभ है, संसार परिवहन से रक्षा करने वाला है ऐसा धर्म मेरा, परलोक तक मलिन नहीं हूं। परमात्म प्रकाश में लिखा कि साथ में रत्नात्रय जाता है, उसको कहते हैं समाधि के साथ बोधि, और यहाँ जो रत्नात्रय रहता है उसे कहते हैं समाधि। बोधि समाधि नाम आता है ना, दो नाम आते, तो बोधि किसे कहते? कि बोधि ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। केवल ज्ञान की बात तो कोई संसार में परिवहन करता नहीं, परंतु ये साथ में आपकी रुचि चली जाए, आपका जिनेन्द्र देव के प्रति जो बहुमान है, अनुराग है, आस्था है, ये न छूटे, आप अभक्त से बचे हो, 5 पाप से बचे हो, 4 कसाय से बचे हो, समय पर मंदिर आते हो, स्वाध्याय मन लगाते हो, ये संस्कार न छूटे, ये बहुत बड़ी बात है। कि यदि आप यहाँ से देह छोड़ के जाओ पर अपनी रुचि लेके जाओ, दूसरा है इसमें बस पढ़ी भर लेती है, अंत क्रिया अर्थात संन्यास मरण, वही जिस तप का आधार हो उस तप के फल की सकल दर्शी सर्वज्ञ देव भगवान स्तुति अथवा प्रशंसा करते हैं कि जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ तो क्या हुआ, तप उसका निष्फल है। इसका अर्थ क्या है ये बताना है कि यदि आपने जीवन भर व्यवस्थित आराधना की और यदि आखिरी फेल हो गया तो वो अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ गया और अंत भला तो सब भला। अभी इसमें ये बात बताई उन्हें कि तुम्हारा तपश्चर्य यदि जीवन भर तुमने सार्थक किया है तो उसे आखिरी में भी सार्थक करो आप, नहीं तो यदि ये बिगड़ा आखिरी में रुचि बिगड़ गई, क्योंकि इस पंचम काल में 16 स्वप्न जो चंद्रगुप्त सम्राट ने देखे थे ना उसमें एक सपने ऐसा है कि ये व्यक्ति जवानी में तो रुचि जगाएंगे, नियम लेंगे, धर्म करेंगे और बुढ़ापे में शिथिल होकर के उन्हें छोड़ेंगे, इसलिए ये घटना हमारे ऊपर न घट पाए। अपन पहले ही से सावधान रहो कि इतनी दृढ़ता से उस बात को पालो, स्वाध्याय का रस बढ़ाओ, चैतन्य के प्रति आदर बढ़ाओ, पंच परमेष्टियों के प्रति भक्ति बढ़ाओ, विषय कषाय से बचने की परिणाम रखो, खोटी संगति से न पड़ो। यदि ये जो भाव आपके साथ चले गए ऐसे बहुत कम केस होते हैं कि जैसे जीवंदर कुमार ने आखिरी मरते समय कुत्ते को लमुकार मन सुना आखिरी में, अभी समाधि मर नहीं है वो, परंतु उसे लमुकार मन सुनने मिला। बताओ जो जीवन भर मांस खाता हो, हड्डी चूसता हो, चूहे पकड़ता हो, बिल्ली खाता हो, उसको लमुकार मन सुनाने वाला कहां से मिल गया कि कोई पुण्य का उदय आ गया और उस समय जीवंदर जी वहीं से निकले अधमरा जान के उसे ऐसा गोदी में बिठाला, लिखा गोदी में लटाया, उसके ऊपर हाथ फेरा, ऐसा प्रेम दिया बात्सल और फिर उसे बहुत मंद मंद स्वर में नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्ञाणम ऐसा सुनाते रहे और वो उसी मंद मंद बात को सुनते सुनते देह छूटे और एकदम देह हो गए और देह होके आया कि आपकी हम क्या सेवा करें, आपके महाउपकार से हमने ये तुच्छ पर्याय से अपनी छुट्टी पाई और आज हम देव की पर्याय में, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैन धर्म मिल गया, महाभगवान मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि नहीं नहीं साहब मैं आपकी सेवा करना चाहता। अब वो लंबी कथा है, जब कष्ट पड़े तब आप बुलाना। इस तरह से ये समाधि मरण का पाठ है, ये बहुत सावधानी जीवन में आए, किसी को भय दिखाने के लिए नहीं पढ़ा जा रहा, ये सावधान होने के लिए कि देखो सबकी देह छूटना, पर देह छूटने के पहले धन्य वे हैं जिनकी देह दृष्टि छूट जाती। अभी एक पाठ पढ़ेंगे अपन जो आपको दिया है, सुन परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, परम ब्रह्म का रूप आया नजर, परम ब्रह्म की मुझे को आई परख हुआ उर्मि संन्यास का अबोहरस, लगन आत्मा राम से लग गई महामोह निद्रा मेरी भग गई, कुली दृष्टि चैतन्य चिद्रूप पर टिकी आन कर ब्रह्म के रूप पर। हमें आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज आए क्योंकि ये समाधि में है ना, सभी को आवश्यक है। परम रस की अब तो गटा गट मेरे शुद्धातम रहस्य की रटा रट मेरे, यहाँ आज रोने का क्या सूर है मेरे हर से आनंद का जोर है, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे न कुछ और बतिया बताओ मुझे, न रो मेरे पास इस वक्त में, कि तेष्टा हूँ खुशहाल खुश वक्त में, जरा रोने का तमुल करो नजर मेहरबानी कि मुझे पर धरो, उठो अब मेरे पास से सब कुटुंब तजो मोह मिथ्या का सब विटम, जरा आत्मिक भाव और आने दो परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्म चर्चा सिवरते उलास करो और चर्चा न तुम मेरे पा, जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे, एकाया पे पुटकी पड़ी मौत की निगाया इसी लो के नाथ की, ये दे चिरकाल की है मुई मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, तजा हमने नफरत से मुर्दयाज, चलो यार अब चल करें मुक्ति रा, जिसम झोपड़ी को लगी आग जब हुई मेरे बेराग की जाग, तब समाले में रतना त्रय अपने तीन, लिया ब्रह्म अपने कुमे आप जी, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं फिर भय मुझको क्या, मेरा नाम तो जीव है जीव हूँ, चिर जीव चिरकाल चिरंजीव हूँ, अखंडित अमंडित अरूपी अलख अदेही अनेही अजेयी अचक, परम ब्रह्मचर्य परम शांतितम, निरालोक लोकेश लोकांतनम, परम ज्योति परमेश परमात्मा, परम सिद्धि परसिद्ध शुद्धात्मा, चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हूँ, निरंजन निराकार शिवभूप हूँ, चिता में धरो इस को ले जाके तुम, हुए तुम से रुक सत क्षमा लेके हम, कहीं जाओ दे क्या इससे काम, तजी इसकी रगबत मोहब्बत तमाम, मुर संग रह रह बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन त्यों जग में सन्यास किए घड़ी, मेरे हाथ आई है अद्भुत जड़ी, विषय विष से निर्विष आज में चला चल सियवी चल हुआ आज में परम ब्रह्म लाहा लिया आज में परम भाव अमृत पिया आज में घटा आत्म उपयोग किया इजूं अजब तुर्क तुरिया बनी रंग भूम सुकल ध्यान टाकी किटंको निजानंद झाझन की झंकोरे अजर हूँ अमर हूँ नमरता कभी चिदानंद शाश्वत न डरता कभी कि संसार के जीव मरते डरे परम पद कसिव लाल बंधन करे चार लाइन फिर से दोहरा अजर हूँ अमर हूँ नमरता कर बिना देखे बोलो अजर हूँ अमर हूँ नमरता कभी चिदानंद शाश्वत न डरता कभी बिना देखे चिदानंद शाश्वत न डरता कभी कि संसार के जीव मरते डरे परम पद कसे विलाल बंधन करे परम पद कसे विलाल बंधन
सहजानंदीशो दस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी 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 अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप ऋष्भादिति महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान 9 सिमंदर आदित्य अजित वीर्य पर्यंत 20 वीर्यमान जिनेन्द्र भगवान 9 अड़ज्ञान बलना धारक एवं श्री बाहुबली मनेन्द्र भगवान 9 साधुवाद रूप अनेकांतमय समय सार नियम सार आदि समस्त जिनवाणी मात 9 कलिका सरोग देव कुनकुन आदि समस्त आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवान 9 जिनवाणी ना उंडा ने घन रसे समझावनार अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरु देव 9 कहान गुरु महिमा बतावनार प्रशम मूर्ति भगवती मात 9 अपूर्व सरनात्म सिद्धिना दाता रेवा कृपाणु देवनो श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्मनो हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन ज्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो बोलो नित्य बुधक जिनवाणी मात 9